सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्धी कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदात सांगवई जिनवाणी माता की जय। आती हूँ अपने विषय पर। संस्कृत व्याकरण जो आप अपने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें प्रकृति भाव संधि चल रही है। इसमें आपने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ संधि करने की स्टाइल सीखी है। जैसे कल हुआ अमी अस्वाह, अमी एडका वगैरह, इन नामों को बताया गया कि बहुवचन ममी इस सूत्र से ये ज्यों की त्यों रहे और इनकी संधि नहीं हुई, इसी का नाम है प्रकृति भाव। अब आगे के सूत्र में और पढ़ते हैं। आज प्रकृति भाव संधि समाप्त हो रही है। अनुपदिष्टाश्च अनुपदिष्टाश्च
अनुपदिष्टाश्च,
इस सूत्र का अर्थ है कि अनुपदिष्ट से परे स्वर के आने पर भी संधि नहीं होती है। तो अनुपदिष्ट का मतलब क्या है? जिनके लिए कोई अलग से उपदेश नहीं किया गया, ऐसे शब्द अनुपदिष्ट कहलाते हैं। उन शब्दों को कहा कि जैसे आगच्च भो देवदत्त अत्र, उत्तिष्ठ भो यज्ञ दत्त इह, आया ही भो विष्णु मित्र इह। तो इसमें स्वर के आने पर भी संधि नहीं हुई, क्योंकि ये वाक्य ज्यों के त्यों रह गए। तो अब आगे इसमें कहते हैं नेतो 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 का मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि प्लुत से परे इति शब्द के आने पर संधि हो जाती है, यानी जो ऊपर का नियम है वो इसमें नहीं लागू होता है। अर्थात जैसे बोले, जैसे ऊपर भी संबोधनवाचक शब्द है देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र, लेकिन आगे जो इसी प्रकार के शब्द हैं उनमें क्या किया है? प्लुत, प्लुत के आने पर शब्द की संधि हो जाती है। तो जैसे कहा सुश्लोक इति, तो सुश्लोक में कामे आ है और इति का ई है, तो सुश्लोकेति। सुश्लोकेति का मतलब हे अच्छे श्लोक, तो उसमें प्लुत। अब देखो, आपको जो संज्ञाएं पढ़ाई गई, जो संधि पढ़ाई गई, उससे ये एक थोड़ा सा नियम अलग आया है कि जैसे दूर से बुलाने में, किसी को संबोधन करने में हे राम, हे भगवान, हे बच्चों इधर आओ, तो ये दूर से बुलाने अर्थ में है। गाने में पंचम स्वर जैसे निकालते हैं जब पढ़ते हैं, रोने में बड़ी जोर की आवाज निकाल के रोते हैं, तो इनकी प्लुत संज्ञा होती है। इनमें प्लुत में तीन मात्राएं होती हैं, जिसको गला खींच करके बोला जाता है और देर तक बोला जाता है, तो उसमें तीन मात्राएं मानी गई हैं। उसके लिए एक श्लोक है, उसको भी आप याद करना। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो,
एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो,
द्विमात्रो दीर्घ उच्यते,
द्विमात्रो दीर्घ उच्यते,
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो,
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो,
व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्,
व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्।
ये हुआ। अब इसका अर्थ जानिए कि जिसमें एक मात्रा है उसको कहते हैं ह्रस्व। जैसे नमो बोला आपने, तो न में एक मात्रा है, तो ये हुआ ह्रस्व। और जिसमें दो मात्राएं हैं उसको कहते हैं दीर्घ। जैसे मो, तो इसमें दो मात्रा है, ओ दीर्घ है, उसको दीर्घ कहते हैं जिसमें दो मात्राएं होती हैं, बड़ा आ, बड़ा उ, ए, तो इनमें दो मात्राएं कहलाती हैं तो उसको कहते हैं दीर्घ। और जिसमें तीन मात्राएं हैं उसको कहते हैं प्लुत। हे, भो, रे, अरे, ऐसे जैसे कहते हैं हे सीते, ये प्लुत है, इसमें तीन मात्रा मानी जाती हैं। और व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और व्यंजन जो है उसकी आधी मात्रा मानी जाती है। व्यंजन माने जो हलंत वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, इसमें स्वर यदि ना हो तो इसका पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। स्वर सहित जब इनका उच्चारण करते हैं तो कहते क, ख, ग, घ, ङ, और जब इसमें से स्वर निकाल दिया जाता है तो उसकी हलंत लगा दिया जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, क, ख, उसका पूरा उच्चारण भी नहीं हो पाता। तो खाली व्यंजन जब रहता है तो उसकी आधी मात्रा होती है। जैसे जब नमोकार मंत्र का पूरी तरह विश्लेषण करते हैं ना, तो न, न में से हलंत कर देते तो उसमें आ निकल जाता है, तो न की आधी मात्रा होती है, और न में आ लगा रहा तो ये ह्रस्व कहलाता है, इसकी एक मात्रा कहलाती। तो एक मात्रो भवेत ह्रस्व, एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, दो मात्रा वाला दीर्घ होता है, और तीन मात्रा वाला वह प्लुत कहलाता है। तो ये विशेष संज्ञाएं इसके अंदर बताई गई है। इति प्रकृति भाव संधि, इस प्रकार से ये बहुत संक्षेप में प्रकृति भाव संधि कही। इसमें संक्षेप में आपको यही जानना है कि ज्यो का त्यों शब्दों का विग्रह होने के बाद भी उनकी संधि नहीं होना, और वैसे ही उन दोनों का उच्चारण होना, ये प्रकृति भाव संधि है। लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं विकल्प से संधि होती भी है, इसलिए इस प्रकृति भाव संधि के प्रकरण को अलग से लिया है, वरना तो बस केवल इतना ही कह देते कि कहीं भी संधि नहीं होती है, परंतु कहीं कहीं होती है तो उसके नियम को अलग से बता करके कि दो वचन वाले, तीन वचन वाले जो शब्द हैं, आगे स्वर हैं, उनकी कहीं संधि होती है और कहीं पर संधि नहीं होती है। इस प्रकार से ये प्रकृति भाव संधि का प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ है। अब आपको केवल एक प्रश्न पूछती हूँ कि ओष्णम कैसे बना। प्रकृति भाव संधि के अंदर ही वर्णन आया है ओष्णम, वो किस प्रकार से बनता है, जिसको भी आता हो, जिन्हें ध्यान से पढ़ा हो, अभ्यास किया हो, तो अपना हैंड रेज करें और उनमें से एक से किसी से पूछा जाएगा, स्पॉटलाइट उनको करें जो लोग बताना चाहते हो। ओष्णम ये किस अर्थ में है और कैसे बना, कोई बताएंगे क्या, किसी ने हैंड रेज किया, चलिए बताइए। व्याकरण है ना, और बीच बीच में कभी छूट भी जाती है तो आप लोग उसको थोड़ा कठिन समझते होंगे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपकी रोज क्लास जरूर जरूर चले। हाँ अच्छा, बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, इसमें पेज नंबर 17 पर देखें। ईषत अर्थ में, ईषत माने किंचित, थोड़ा, कहेंगे ना थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ, तो किंचित अर्थ में हुआ, तो आ प्लस उष्णम यहाँ बताता कि इन इन अर्थों में संधि हो जाती है। तो ईषत अर्थ में आपने क्या है, आ प्लस उष्णम, उष्ण माने गर्म, और आ उसमें लगाए माने किंचित अर्थ में आ लगता है, तो आ प्लस उष्णम जब यहाँ किंचित अर्थ है कुछ, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं, यानी ऊ का लोप हो जाता है, आ का ओ हो जाता है, ओष्णम बन गया। आपको ये अगर ज्ञान है तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ओष्णम जलम आने, यानी किंचित गरम, थोड़ा गरम जल ले आओ, या आप कहीं ओष्णम शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ओष्णम माने कुछ गरम जल, तो ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए। हमारी सविता जी ने अच्छा उत्तर बता दिया। ये व्याकरण की बात हो गई।